टीवी पर चल रही न्यूज ने ही रेहान को बताया था कि आज अरमान के चाइनीज रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, एक नई फ्रेंचाइजी। ड्राइंग रूम में रेहान और रेहाना बेगम साथ बैठे थे, सामने जुबेदा बेगम और माहिरा थीं। तभी नौकरानी चाय के कप रखकर चली गई। मुझे तो समझ नहीं आता भाभी, आप लोग ओपनिंग सेरेमनी में पहुंच क्यों नहीं पाए, जुबेदा बेगम ने हल्की शिकायत भरे लहजे में कहा। असल में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था कि रेहाना बेगम और उसकी फैमिली नहीं आई थी। हमें तो किसी ने इनवाइट ही नहीं किया, तो हम कैसे आते? तुम लोगों ने मुझे हमें बताया भी नहीं, रेहाना बेगम ने सीधा जवाब दिया। रेहान तो हर बात जानता है और अरमान तो उससे पूछे बिना कुछ करता भी नहीं, मुझे लगा आपको पता होगा, जुबेदा बेगम ने सफाई दी। तो तुमने ये सोच लिया कि इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं है? रेहाना बेगम की आवाज़ में अब हल्की नाराजगी थी। नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे सच में लगा कि आपको सब पता होगा, जुबेदा बेगम ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। तभी रेहान चुपचाप उठकर अंदर चला गया। हॉल में अरमान अभी अभी आया था किसी से फोन पर बात करते हुए। फोन रखते ही रेहान ने उसकी तरफ देखा। मुबारक हो, रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, बताया भी नहीं? अरमान हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में दूरी साफ थी। मुझे लगा अभी थोड़ा टाइम लगेगा ओपनिंग में, और मैं अपने छोटे से रेस्टोरेंट के लिए आपका काम छुड़वाना सही नहीं समझा, पता है मुझे आप कितने बिजी रहते हैं, आपको कितने काम होते हैं। उसकी बातें सुनने में जितनी सॉफ्ट थीं, अंदर से उतनी ही चुभने वाली थीं। असल में अरमान के दिल में अब रेहान के लिए पहले जैसी इज्जत नहीं बची थी। जिस दिन उसने उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी, उसी दिन कुछ टूट गया था, और आज वो दूरी साफ नजर आ रही थी। तुम मुझसे बात करते, मैं फूड अथॉरिटी वालों को हैंडल कर लेता, तुम्हें पता है ना आजकल क्या चल रहा है, रेहान ने थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, जैसे वो दिखा रहा था कि उसे अरमान की कितनी फिक्र थी। अरे भाई, इस छोटी सी बात के लिए आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं सब हैंडल कर लूंगा, अरमान ने सहजता से कहा। तुम्हारे लिए इतना वक्त तो निकाल ही सकता हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो। रेहान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि आप बहुत बिजी हैं, अरमान ने बीच में ही उसकी बात काट दी। आवाज नरम थी लेकिन मतलब साफ था, दूरी। एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। अच्छा ठीक है, अरमान ने खुद ही बात बदल दी, संडे को स्विमिंग के लिए चलते हैं साथ में, अगर आप फ्री हैं तो। वो साफ था, वो बिजनेस की बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। दोनों वापस ड्राइंग रूम में आ गए। अरमान ने अंदर आते ही सबको सलाम किया और बिना रुके अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। आज उसने रेहाना बेगम से भी कोई बात नहीं की। रेहाना बेगम हैरानी से उसे देखती रह गई। वही अरमान जो हर छोटी बड़ी बात उनके पास आकर करता था, आज बिना रुके चला जा रहा था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, अरमान ने बस इतना कहा और आगे बढ़ गया। अरमान साफ तौर पर रेहान की फैमिली से दूरी बनाने लगा था। उसी रात जब ये खबर फैली कि अरमान ने अपनी फूड चेन शुरू कर दी है, एक चाइनीज रेस्टोरेंट की, फैजान ने भी अपने कमरे में ये न्यूज़ देखी। स्क्रीन पर चलती खबर को देखते ही उसे सब समझ आ गया। तो ये बात है, वो हल्के से मुस्कुराया। अब उसे समझ आ चुका था कि नूर का फोन क्यों आया था और वो अचानक ऑफिसर क्यों बनना चाहती है। अरमान की वजह से ही वो ऐसा करने के बारे में सोच रही थी। उसने तुरंत उसी नंबर पर कॉल लगाया जो असल में रानी का था। हेलो, रानी ने फोन उठाया। मुझे नूर से बात करनी थी, मैं उसकी फ्रेंड रानी बोल रही हूँ, अभी मैं अपने घर पर हूँ, उसने मेरे फोन से कॉल की थी, आप उससे बात करवा सकती हैं? अभी तो वो अपने घर पर है, लेकिन कल मैं उससे मिलूंगी, आपकी बात करवा दूंगी। नहीं कोई बात नहीं, फैजान थोड़ा रुका फिर बोला, आप उससे कुछ मत कहिएगा। ठीक है, रानी ने कहा और फोन काट दिया। उधर फरीद खान को भी घर पहुंचकर पता चला कि अरमान ने अपना रेस्टोरेंट शुरू कर लिया है। ड्राइंग रूम में चाय पीते हुए रेहाना बेगम उन्हें बता रही थी, हमें तो इनवाइट तक नहीं किया, फरीद खान हल्का सा मुस्कुरा दिए। आप हंस क्यों रहे हैं, रेहाना बेगम ने हैरानी से पूछा। अरमान ने अकेले ही अपनी ओपनिंग सेरेमनी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं, उन्होंने फिर शिकायत दोहराई। मेरे पास अरमान के अलावा भी बहुत सी फिक्रें हैं, फरीद खान ने गंभीर होते हुए कहा। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं, रेहाना बेगम ने पूछा। डॉक्टर ने क्या कहा सादिया की तबीयत के बारे में, फरीद खान ने सीधा सवाल किया। ठीक है अभी, बस थोड़ी वॉमिटिंग हो रही थी, डॉक्टर ने उसकी दवा दी है और ब्लड प्रेशर की भी, रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, आज ही सैंपल दिए हैं, रेहाना बेगम ने बताया। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। असल में फरीद खान के दिमाग में और ही प्लान चल रहा था जो बहुत जल्दी जिसे वो पूरा करने वाला था। तभी रेहान अंदर आता है, अपने मॉम डैड को साथ बैठे देखकर वो उनके पास आ जाता है। डैड, आपने मेरी और सादिया की टिकट बुक करवाई है, उसकी आवाज में साफ हैरानी थी। तो मेल आ गई तुम्हें, फरीद खान ने बिल्कुल शांत लहजे में कहा। हाँ मगर, रेहान कुछ कहना ही चाहता था कि तभी सादिया भी वहां आ गई। आपने मुझे बुलाया,
उसने धीरे से पूछा। हाँ बेटा, फरीद खान ने प्यार से कहा, तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो और डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी हैं वो सब साथ रख लेना, वहाँ की दवाइयाँ सूट नहीं करेंगी। हम जा कहाँ रहे हैं? सादिया ने मासूमियत से पूछा। हम नहीं, फरीद खान हल्का सा रुके, फिर बोले, तुम और रेहान जा रहे हो सिर्फ 2 महीने के लिए। ये सुनते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रेहाना बेगम ने हैरानी से फरीद खान की तरफ देखा, उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। रेहान भी कुछ पल के लिए चुप रह गया, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। सच में बेटा, फरीद खान मुस्कुराते हुए बोले। सादिया के चेहरे पर हल्की सी खुशी और हैरानी दोनों थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे कितनी बड़ी चाल छिपी है। मगर डैड, इस तरह अचानक? रेहान ने आखिरकार सवाल किया। अचानक इसलिए क्योंकि तुम मेरी बेटी को टाइम नहीं देते। इस बार फरीद खान की आवाज थोड़ी सख्त थी। डैड, आपको पता है ऑफिस में कितना काम होता है? रेहाना ने सफाई देनी चाही। मुझे कुछ नहीं सुनना, फरीद खान ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम ऑफिस का सारा काम भूल जाओ और सिर्फ सादिया का ख्याल रखो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। उन्होंने ऐसे कहा जैसे सादिया से ज्यादा जरूरी उनके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था, एक प्लान जो शायद किसी और को दिख नहीं रहा था। फरीद खान बहुत चालाक आदमी था। केवल फरीद खान ही नहीं, रेहाना बेगम और रेहान तीनों ही बेहद दोस्त चालाक थे, जैसे सब कुछ उसके मन के मुताबिक हो रहा हो। वहीं रेहान अब भी चुप था। मगर ऑफिस, रेहाना बेगम ने कहना चाहा। ऑफिस तो तुम्हारे बेटे के बिजनेस ज्वाइन करने से पहले भी चलता था, फरीद खान ने बात काटते हुए कहा। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, बच्चों को जाने दो। फिर उन्होंने सादिया की तरफ देखते हुए कहा, और वापस आने के बाद अगर सादिया बिजनेस ज्वाइन करना चाहे तो कर ले, दोनों मिलकर संभालेंगे सब। सादिया की खुशी अब और बढ़ गई थी, उसे लग रहा था, और उसे इससे ज्यादा क्या चाहिए था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा था। उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी थी, असल खेल उसी का था। ये सब मैं वापस आकर सोचूंगी, सादिया ने मासूमियत से कहा। अभी तुम जाकर अपनी पैकिंग करो, फरीद खान ने मुस्कुराकर कहा। सादिया खुशी खुशी वहां से चली गई। उसके जाते ही रेहान तुरंत अपने डैड के पास आया। डैड, 2 महीने बहुत ज्यादा होते हैं और फ्लाइट भी 8 घंटे की है, जाकर अपनी तैयारी करो, फरीद खान ने बिना उसकी बात सुने ही कह दिया। रेहान चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ था कि उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। उधर फैजान ने इकबाल को फोन किया। नूर बहुत गुस्से में है, कहीं कोई गलती न कर बैठे, उसने चिंता भरे लहजे में कहा।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।